ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। आज देशभर में 5008 कोरोना के नए मामले आए सामने, 14 संक्रमितों की हुई मौत। त्योहारों के अवसर पर स्वास्थ्य सुरक्षा के सभी मापदंडों को पूर्ण रूप से पालन करने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आग्रह। अनशनरत डॉक्टर गोविंद केसी से अनशन तोड़ने का सरकार ने फिर से किया आग्रह। और अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच हुआ युद्ध विराम। अब समाचार विस्तार से। आज देशभर में 5008 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 1823 महिलाएं और 3185 पुरुष हैं। इसके साथ ही देशभर में कुल संक्रमितों की संख्या 105684 हो गई है। इसी तरह आज देशभर में 1229 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही देशभर में संक्रमण मुक्त होने वालों की कुल संख्या 74252 हो गई है। आज ही कोरोना संक्रमण के कारण 14 लोगों की मौत होने के बाद संक्रमण के कारण मरने वालों की कुल संख्या 614 हो गई है। इसी तरह आज देश भर की 75 जिलों में 30818 सक्रिय संक्रमित हैं। इनमें से 17064 लोग होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 13654 लोग संस्थागत आइसोलेशन में हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने दी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दल के सचेतक शांता चौधरी में निमोनिया का लक्षण दिखने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है। सचेतक चौधरी में कोरोना वायरस का लक्षण दिखने के बाद इलाज के लिए वीर अस्पताल में भर्ती किया गया था। ये जानकारी स्वकीय सचिव संतोष दहित ने दी। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यवाली ने सरकारी कार्यालयों के प्रमुखों को सरकारी कार्यालयों से दी जाने वाली सेवाओं को सरल और प्रभावकारी बनाने का निर्देश किया है। रसुआ में निर्माणाधीन विभिन्न विकास योजना का अवलोकन कर लौटने के क्रम में जिला प्रशासन कार्यालय नुवाकोट में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में मंत्री ग्यवाली ने कहा कि सिंह दरबार के अधिकार को गांव गांव तक पहुंचाने और इसे क्रियान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी जिला स्तरीय कार्यालयों के कंधों पर है। सरकार ने डॉक्टर गोविंद केसी से अनशन तोड़ने का फिर से आग्रह किया है। शिक्षा विज्ञान और प्रविधि मंत्रालय के सचिव एवं वार्ता टोली के संयोजक गोपी मैनाली ने आज एक बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। सचिव मैनाली ने बताया कि सरकार डॉक्टर गोविंद केसी द्वारा उठाई गई मांगों के प्रति संवेदनशील है और सरकार गुणस्तरीय चिकित्सक शिक्षा का विस्तार तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही मेडिकल शिक्षा के लिए विभिन्न जगहों में कॉलेज की स्थापना की तैयारी कर रहा है। सचिव मैनाली द्वारा जारी बयान में चिकित्सा शिक्षा के नियमन के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा आईन 2075 के जारी होने, इसी के अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन और एकीकृत प्रवेश परीक्षा, सीट निर्धारण, एकीकृत शिक्षक सत्र, गुणस्तर प्रत्यायन बोर्ड गठन, नेशनल मेडिकल स्पेशलिटीज का बोर्ड गठन, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में 75% छात्रवृत्ति लगात नियमन संबंधी व्यवस्था का नियम के रूप में क्रियान्वयन किए जाने की जानकारी दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। समय है व्यापारिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ।
1498 मा फोन गर्नुस्।
समस्या पोस्टपेडमा नि आयो।
1498 मा फोन गर्नुस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेड को पुक नम्बर पनि चाहिए थियो,
त्यसको लागि पनि 1498 मा फोन गर्नुस्।
नेपाल टेलिकमको जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कुनै पनि समस्या आएमा जे जे सोध्न मन छ 1498 मा फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस ने कल के लिए तय की गई केंद्रीय सार समिति की बैठक को स्थगित किया है। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष एवं अग्रज समाजसेवी रामबाबू प्रसाई खनु परुदे प्रकाहा की मृत्यु के कारण बैठक को स्थगित किए जाने की जानकारी पार्टी कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड़ेल ने दी है। ऐतिहासिक रानी पोखरी का पुनर्निर्माण का काम संपन्न होने के गगार पर है। अश्विन महीने के पहले हफ्ते निर्माण कार्य संपन्न होने के पश्चात दशहरे से पहले ही राष्ट्र प्रमुख द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ये जानकारी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ने दी है। प्रहरी प्रधान कार्यालय ने कोविड-19 को केंद्र बिंदु में रखकर पर्वों त्योहारों के मद्देनजर विशेष सुरक्षा योजना बनाने और उसे लागू करने का घाटी प्रदेश और माथत के जिलों प्रभारी को निर्देश किया है। सुरक्षा योजना अनुसार संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों को निगरानी में रखने और सादी पोशाक में प्रहरी को परिचालित करने की जानकारी दी गई है। वीरगंज की बाईपास सड़क खंड की ब्रह्म चौक में गैस भरने वाली टैंकी का विस्फोट होने के कारण एक व्यक्ति की घटनास्थल में ही मौत हुई है। वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 13 की ब्रह्म चौक में हुई इस घटना में 12 सिमरा के निवासी 45 वर्षीय ऋषि चौधरी की घटनास्थल में ही मौत हुई है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय परसा ने दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अजरबैजान के विदेश मंत्री जेहुन बायरामोव ने कहा कि मॉस्को में हुई वार्ता के दौरान मानवीय आधार पर युद्ध विराम की घोषणा तत्कालीन तौर पर की गई है। ये व्यवस्था शवों के आदान प्रदान तक कायम रहेगी। बाकू में ब्रीफ करते हुए उन्होंने शिकायत की कि जमीन पर जो हालात थे वो उनके देश के लिए माकूल नहीं थे और अजरबैजान को उम्मीद थी कि उनके नियंत्रण में अधिक क्षेत्र होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही एक दूसरे पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इससे युद्ध विराम के समझौते के मायनों को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। रूस ने दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर मध्यस्थता की थी। तुर्की ने कहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया की चल रही लड़ाई में वो अजरबैजान का तब तक समर्थन करता रहेगा जब तक कि नागोर्नो काराबाख के विवादित इलाके पर उसका नियंत्रण स्थापित न हो जाए। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 3,72,26,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,89,55,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 10,74,000 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका पहले स्थान पर है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या 89,05,000 से अधिक है, जबकि 2,18,700 से अधिक की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में 69,97,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,07,500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि ब्राजील में 50,57,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 1,49,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 14.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से।